लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत विगत कुछ समय से हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित 150 भजनों के संग्रह यानी स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या करते रहे थे। स्तोत्र ग्रंथ के बाद बाइबल धर्मग्रंथ में सूक्ति ग्रंथ को रखा गया है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। सूक्ति ग्रंथ में सदाचार संबंधी सूक्तियां सम्मिलित हैं। इसमें प्रज्ञा, न्याय, धर्म, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के वर्णन का मनुष्यों को परामर्श दिया गया है, ताकि मनुष्य इन मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल और साकार बना सके। मनुष्य यह याद रखे कि प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्व सृष्टा और सर्व पालक है, जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य सुखी और संपन्न बन सकता है। मैंने पुकारा और तुमने मुझे अस्वीकार किया, मैंने अपना हाथ पसारा और तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने मेरे परामर्श का तिरस्कार किया और मेरी चेतावनी ठुकराई। इसलिए मैं तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगी, तुम पर आने वाले आतंक का उपहास करूंगी। जब आतंक तुम पर आंधी की तरह छा जाएगा, जब विपत्ति बवंडर की तरह तुम पर टूट पड़ेगी, जब दुख और संकट तुमको अभिभूत कर लेंगे, तब वे मेरी दुहाई देंगे किंतु मैं उत्तर नहीं दूंगी, वे मुझे खोजेंगे किंतु मुझे नहीं पाएंगे। उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और प्रभु पर श्रद्धा नहीं चाही, उन्हें मेरा परामर्श पसंद नहीं आया, उन्होंने मेरी चेतावनी का तिरस्कार किया, इसलिए वे अपने आचरण का फल भोगेंगे, वे अपनी योजनाओं के परिणाम से तृप्त किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के 24 से लेकर 31 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। सूक्ति ग्रंथ में प्रज्ञा जीवन के सीधे सरल नियमों की प्रस्तावना करती है। वह मानवीय जरूरतों और मानव की उत्कंठाओं को ध्यान में रखकर परामर्श देती है। इसमें प्रज्ञा ज्ञान की पहचान का आह्वान करती है। वह प्रज्ञा का तिरस्कार करने वालों को उनके विनाश की चेतावनी देती है। इस ग्रंथ की सूक्तियों में ज्ञान और मूर्खता दोनों का विवरण प्रस्तुत कर पाठक से प्रज्ञापूर्ण चयन का आग्रह किया गया है, और उन व्यक्तियों को फटकार बताई गई है जो प्रज्ञा और विवेकपूर्ण चयन नहीं करते। श्रोताओं, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, सूक्ति ग्रंथ में निहित प्रज्ञा के शब्द केवल प्राचीन काल के लोगों के लिए ही नहीं रचे गए थे, अपितु ये आज भी समसामयिक हैं। आज भी ये सूक्तियां हमारी बुद्धि को प्रखर बनाकर हमारे जीवन को आलोक प्रदान करती हैं। इन सूक्तियों से मार्गदर्शन पाकर हम मूर्खतापूर्ण कृत्यों से बच सकते तथा सुचारू रूप से जीवन यापन कर अपने घर, परिवार और समाज तथा विश्व को शांति एवं न्याय का एक बेहतर स्थल बना सकते हैं। आगे सूक्त ग्रंथ के पहले अध्याय के अंतिम दो पदों में प्रज्ञा फिर एक बार सावधान करती हुई कहती है, अज्ञानियों की अवज्ञा उन्हीं को मारती है, मूर्खों का अविवेक उनका ही सर्वनाश करता है, किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। श्रोताओ, अज्ञान के अंधकार में वही डूबा होता है जो अपने मालिक या अपने गुरु की बात नहीं मानता, जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वही व्यक्ति अज्ञानी है, क्योंकि उसे यह नहीं पता होता कि अपने माता पिता, अपने अभिभावक और अपने शिक्षकों की आज्ञा नहीं मानने से उनका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नुकसान केवल अवज्ञाकारी का होता है। वह अज्ञान के अंधकार से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा तथा प्रज्ञा के प्रकाश से वंचित रह जाएगा। इसलिए समय रहते ही हम भी अपने आचरण सुधार लें, प्रज्ञा की बात मान लें तथा विवेकपूर्ण आचरण करें, क्योंकि प्रज्ञा कहती है, मूर्खों का अविवेक उनका ही सर्वनाश करता है, किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। वस्तुतः श्रोताओं, प्रज्ञा एक छिपा हुआ खजाना है जो उन्हीं को मिल पाता है जो सदाचरण करते हैं, जो नियमों के पालन से नहीं डरते, जो अनुशासन में रहते हैं, जो संयम से काम लेते और धैर्यपूर्वक अपने सभी दायित्वों और समस्त जिम्मेदारियों को निभाते हैं। सूक्ति ग्रंथ के दूसरे अध्याय के प्रथम 7 पदों में प्रज्ञा कहती है, पुत्र, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बात कान लगाकर सुनोगे और सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे और खजाना खोजने वाले की तरह उसके लिए खुदाई करोगे, तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझ पाओगे और तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है, वह धर्मियों को सफलता दिलाता और ढाल की तरह सदाचारियों की रक्षा करता है। श्रोताओ, इन पदों में यही कहा गया है कि हम प्रज्ञा की बातें ध्यान से सुने, सत्य में मन लगाएं तथा विवेक, सूझबूझ, समझदारी और सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। यह ध्यान में रखना हितकर होगा कि प्रज्ञा हर किसी को यों ही नहीं मिल जाती, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, इसे वैसे ही ढूंढना पड़ता है जैसे किसी अनमोल खजाने को खोजा जाता है। इस अनमोल खजाने को पाने का सरल सा रास्ता है ईश भक्ति, सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा, इसलिए कि सारी प्रज्ञा का स्रोत है प्रभु ईश्वर। ईश्वर ही वह जल प्रवाह है जो हमारे दिलो दिमाग में विवेक, सूझबूझ और समझदारी को प्रवाहित करता है। ईश नियमों का अनुपालन ही हमें विवेक की शिक्षा प्रदान करता, वह हमारे मार्गों को सुगम और सरल बनाकर हमें सफलता की चोटी तक ले जाता है तथा हर जोखिम से हमारी रक्षा करता है। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ के 8वें और 9वें पदों में लेखक कहता है, वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है, तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे।
वचन तेरा है प्रभु।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। मानव तस्करी के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क तालिता कुम ने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के अवसर पर 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ चिंता अभियान में भाग लेने हेतु विभिन्न नेटवर्कों, साझेदारों और मित्रों का आह्वान किया है। धर्म संघों की परमाधिकारियों के संघ यूआईएससी द्वारा 2009 में स्थापित तालिता कुम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 90 देशों में 50 नेटवर्कों द्वारा संचालित है। 2020 में तालिता कुम ने विश्व स्तर पर मानव तस्करी से बचाए गए 17,000 पीड़ितों की मदद की थी। उन्हें सुरक्षित आवास, शिक्षा, नौकरी के अवसर, न्यायिक समर्थन, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने में अपना योगदान दिया था। इसके साथ ही 1,70,000 लोगों को तालिता कुम के द्वारा जागृति अभियान का लाभ मिला था। मानव तस्करी के खिलाफ चिंता अभियान का उद्देश्य है यह दिखलाना कि बीमार बचे हुए लोगों तथा इसके शिकार लोगों की देखभाल करने के द्वारा मानव तस्करी से निपटने की यात्रा के हर कदम में अंतर लाया जा सकता है। इसी अनुभव के आधार पर कार्तिक दम बहने जानती हैं कि दीर्घकालिक देखभाल, केंद्रित दृष्टिकोण, बचाए गए लोगों की पुनः तस्करी और उनके बार बार शोषण के जोखिम को कम किया जा सकता है। हालांकि वे कहती हैं कि इन दृष्टिकोणों को संस्थागत स्तर पर समग्र समर्थन की आवश्यकता होती है जिन्हें धर्म बहने अकेले प्रदान नहीं कर सकती। तालिता कुम की अंतर्राष्ट्रीय संयोजिका सिस्टर गब्रेला बोतनी CMS ने कहा, हम सभी भली इच्छा रखने वाले लोगों का आह्वान करती हैं कि हम एक साथ आएं तथा मानव तस्करी के प्रणालीगत कारणों का सामना करें ताकि तस्करी को देखभाल में बदला जा सके। खासकर हम सरकारों से अपील करती हैं कि वे बचाए गए लोगों को दीर्घकालीन समर्थन प्रदान करें, खासकर उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, काम के लिए अनुमति, नौकरी के अवसर, न्यायिक सुविधा, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल एवं मनोवैज्ञानिक समर्थन पाने में मदद दें। UISG की कार्यकारी सचिव सिस्टर पत्रिसा मोरी ने कहा, तालिता कुम न केवल विश्व के कमजोर और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों को सशक्त करने के लिए है बल्कि उन प्रणालियों को नष्ट करना भी है जो उनके उत्पीड़न और शोषण को बल प्रदान करती हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में शुक्रवार को 32वें ओलंपिक खेल के उद्घाटन के पूर्व टोक्यो महाधर्म प्रांत ने कोविड-19 महामारी के कारण खिलाड़ियों के लिए अपना प्रेरिति कार्यक्रम रद्द कर दिया है। 23 जुलाई को टोक्यो में ओलंपिक खेल का उद्घाटन होने वाला है किंतु कोविड-19 महामारी का संक्रमण अब भी बढ़ रहा है। अब तक जापान में 8,48,000 लोग संक्रमित हैं। और 15,000 लोगों की मौत हुई है, जिसने सभी कार्यक्रमों में बदलाव लाने हेतु मजबूर किया है और खेल दर्शकों के बिना खेला जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय भी स्थानीय धर्म प्रांत को प्रभावित करते हैं, जिसने खिलाड़ियों और दर्शकों का साथ देने की प्रेरित योजना को रद्द कर दिया है। एक विज्ञप्ति में टोक्यो के महाधर्म अध्यक्ष तत्सुयो एसाओ किकुकी ने बतलाया, योजना बनाई गई थी कि हर एक बल्ले खिलाड़ियों की आध्यात्मिक देखभाल करेगी, किंतु हमने अब इन प्रयासों को सुरक्षा मामलों के कारण रद्द करने का निर्णय लिया है। धर्म प्रांत विशेष ओलंपिक समिति ने इस अवसर पर योजना बनाई थी कि स्थानीय महागिरजाघर में अंतर्राष्ट्रीय ख्रिस्ताक अर्पित की जाएगी तथा सभी खिलाड़ियों के लिए एक विशेष रोजरी की जाएगी, किंतु टोक्यो महाधर्म प्रांत के क्षेत्र को सरकार के द्वारा आपातकालीन स्थिति वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। परिणाम तक खिलाड़ी ओलंपिक गांव से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही पुरोहितों तक पहुंचेंगे। महाधर्म अध्यक्ष किकुकी ने सभी धर्मों के लोगों का आह्वान किया है कि वे कोविड विरोधी स्वास्थ्य उपायों का सम्मान करें तथा खिलाड़ियों से आग्रह किया है कि वे गिरजाघरों का दौरा न करें, क्योंकि कार्तिक समुदाय एवं सभी लोगों की प्रतिबद्धता है अधिक संक्रमण फैलने से रोकना। महाधर्म अध्यक्ष ने जोर देते हुए कहा, हमने सुरक्षा उपायों को अपनाया है क्योंकि हम न केवल अपने जीवन को बचाने बल्कि दूसरों के जीवन को भी बचाने की जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं। हमें संक्रमण फैलने से रोकना है। धर्म विधि समारोहों को अब भी ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा। 32वें ओलंपिक खेल को 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया था, जिसको महामारी के कारण 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को रखा गया है। उद्घाटन समारोह शुक्रवार को टोक्यो के राष्ट्रीय स्टेडियम में स्थानीय समयानुसार शाम 8 बजे संपन्न किया जाएगा। कोविड-19 के कारण विश्व के लाखों बच्चे अनाथ हो गए हैं और वे भुखमरी, गरीबी, दुराचार एवं हिंसा के शिकार हो रहे हैं। हम उन्हें और शिकार होने नहीं दे सकते, भले ही वे महामारी के शिकार अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं। यदि हम इस पीढ़ी की रक्षा नहीं करते हैं तो हम विकास और उन्नति में उन्हें हमेशा के लिए पीछे छोड़ने की जोखिम उठाएंगे। उक्त बात सेव द चिल्ड्रन के महासचिव दानियेला फत्तरेल्ला ने लाइसेंस जर्नल में प्रकाशित जटिल अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पर टिप्पणी करते हुए कही, जिसके अनुसार विश्व में कोविड-19 के कारण हर 2 मौतों में एक बच्चे ने अपने माता पिता या किसी खास रिश्तेदार को खो दिया है। लाइसेंस में प्रकाशित अध्ययन के आंकड़े अनुसार विश्व भर में करीब 1,00,000 से अधिक बच्चों ने कोविड के कारण अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है और आमतौर पर करीब 1.5 मिलियन बच्चों ने प्राथमिक देखभाल करने वालों को खो दिया है। सेव द चिल्ड्रन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो करीब 100 सालों से बच्चों को विभिन्न प्रकार की जोखिमों से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और उन्हें भविष्य की गारंटी प्रदान करता है। महामारी ने करीब 3 करोड़ बच्चों की शिक्षा को प्रभावित किया है और स्कूल नहीं जा पाने के कारण बच्चे और किशोर बाल श्रम, शोषण, बाल विवाह, जल्द गर्भधारण, स्कूल से वंचित आदि के शिकार हो रहे हैं। वास्तव में महामारी के कारण गरीब देशों के बच्चे धनी देशों की तुलना में 66% अधिक स्कूल से वंचित हुए हैं। दानियेला ने कहा, यह एक खतरनाक चीज है जिसका सामना बच्चों को हर दिन आर्थिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से करना पड़ रहा है, जो उनके जीवन और भविष्य को खतरे में डालेगा। वास्तव में बिना अभिभावक के बच्चे खास रूप से असहाय हो जाते हैं और बहुत अधिक जोखिम में पड़ जाते हैं। सेव द चिल्ड्रन ने दुनिया की विभिन्न संस्थाओं और सरकारों से अपील की है कि वे अनाथ बच्चों की स्थिति पर तत्काल ध्यान दें जिन्होंने अपने माता पिता या अभिभावकों को खो दिया है। उन्हें पर्याप्त सहायता की गारंटी दी जाए। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।